ओम शांति। किसी एक देश का राजा राज्य करते करते सभी बातों से ऊब गया और उसके मन में प्रबल वैराग उत्पन्न हुआ। ये राज्य कार्य, राज्य की सभी बातें, उसे लगने लगा कि मेरा जीवन अध्यात्म के लिए है, मुझे खुद की खोज करनी है, स्वयं को ढूंढना है, सेवाएं तो मैं कर रहा हूं परंतु हृदय अतृप्त है। कोई अंदर है जो अतृप्त है और यही सोचकर वो अपने गुरु के पास गया और गुरु से कहा कि मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूं और भगवान के प्रति अपने जीवन को समर्पित करना चाहता हूं, परंतु एक कठिनाई है कि मेरा जो बेटा है बहुत छोटा है, राजपाट कौन संभालेगा और ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति मुझे नहीं दिख रहा कि जो पात्र हो। तो वो गुरु उस राजा की बात बहुत ध्यान से सुनते हैं और कहते हैं, मेरे विषय में तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या मुझसे अधिक पात्र और कोई व्यक्ति होगा, तुम अपना सारा राज्य मुझे दे दो, मैं संभालूंगा, मुझे राजा नियुक्त कर दो। तो वो कहता है, आपसे अधिक श्रेष्ठ तो कोई हो ही नहीं सकता, मैं अपना सारा राज्य आपको समर्पित करता हूं। तो गुरु पूछते, अब तुम क्या करोगे? वो कहता है, मैं राज्य से कुछ पैसे लूंगा और फिर उसी से आगे का जो जीवन है वो बिताऊंगा। गुरु कहता है, पर राज्य तो अब मेरा है, पैसे मैं तुमको नहीं दूंगा, अब क्या करोगे? तो वो राजा कहता है कि मैं कहीं नौकरी ढूंढ लूंगा। गुरु कहता है, हां फिर मेरे पास एक नौकरी खाली है, अगर तुम करना चाहो तो कर सकते हो। राजा कहता है, मैं कोई भी नौकरी करने को तैयार हूं। गुरु कहता है, हां मेरे पास एक राजा की नौकरी खाली है, तुम वो नौकरी ले लो और हर मास राज खजाने से अपनी तनख्वाह ले लेना। तो राजा ये सुनकर चला जाता है और एक साल के बाद जब गुरु आता है तो देखता है राजा भी बहुत खुश है, राज्य वही है, सेवाएं जो वो कर रहा था वही है, कुछ छोड़ा भी नहीं है परंतु खुश है। तो ये ऐसा कैसे हो गया, क्या बदल गया? सब कुछ था वैसे के वैसे, अब भी फिर भी सब कुछ बदल गया। सब कुछ छोड़कर कुछ करने की इच्छा थी परंतु अब वही है और मन से सब कुछ छूट गया और मन से सब कुछ समर्पित कर दिया और मन से सब कुछ किसी को स्वाहा कर दिया। कल सुबह की अव्यक्त वाणी और आज का वरदान, क्या था वरदान में? सब कुछ क्या कर दो, बुद्धि से सरेंडर कर दो, सब कुछ बाप को अर्पण कर दो, बाप के हवाले कर दो, सब कुछ बाप है, सब कुछ बाप में है, एक ही रास्ता है याद का, तो सहज मंजिल पर पहुंच जाओगे। कल क्या कहा था, संगम युग कैसा युग है, सहज प्राप्ति योग का युग है, जहां हो जैसे हो वही रहो, परंतु मेरा कुछ भी नहीं। मेहनत क्यों करते हो, सहज प्राप्ति योग का युग है। बाप मेहनत से छुड़ाने आए हैं, तो मेहनत मुश्किल सब संकल्पों की बाजी है। बाबा ने कहा अगर ये सोचो कि विघ्न है विघ्न है विघ्न है, पता नहीं क्यों है पता नहीं क्यों है, तो विघ्न होंगे। यदि ये सोचो कि मैं गणेश हूं, तो विघ्न स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। पता नहीं अर्थात विश्वास की कमी, लॉ ऑफ फेथ। तो कल की मुरली में बाबा ने बच्चे मेहनत करते हैं इसके कुछ कारण गिनाए, ऐसे 14 कारण है। तो एक एक कारण की हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि यह संगम युग प्राप्ति युग का युग है, द्वापर कलयुग मेहनत का युग है, परंतु संगम सर्व प्राप्तियों का युग है। भाग्य विधाता बाप है, भाग्य विधाता बाप है, भाग्य विधाता बाप है, वरदाता बाप है, अविनाशी बाप है, फ्राक दिल बाप है, वर्षा है, वरदान है, सीजन है, फिर भी मेहनत क्यों, प्रत्यक्ष फल क्यों नहीं खाते। प्रत्यक्ष फल खाने का ये युग है, सहज क्यों नहीं लग रहा, क्यों मुश्किल लग रही है, क्यों मेहनत लग रही है, क्यों कठिनाई लग रही है। इससे पहले कि हम चर्चा चालू करें, एक सूक्ष्म मनोविज्ञान की बात है। कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी का नाम याद करना है और याद नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, बहुत जोर लगाते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं, पूर्ण एकाग्र हो जाते हैं। अभी जबान पर ही रखा हुआ था, पता नहीं कहां चला गया, उस व्यक्ति का नाम याद ही नहीं आ रहा है, याद ही नहीं आ रहा है, याद ही नहीं आ रहा है। बहुत कोशिश कर रहे, बहुत मेहनत, और उसके बाद में छोड़ देते, कुछ दूसरा करने लग जाते हैं, भोजन कर रहे या कहीं चल रहे और अचानक वो नाम याद आ गया। ऐसा क्यों हुआ? मन के दो भाग है, चेतन अवचेतन। जो प्रयत्न चालू था वो चेतन मन से चालू था, एकाग्र हो गए थे, और जब एकाग्र हो गए थे और कुछ नहीं सूझ रहा था, बस उसी को याद कर रहे थे, पर याद नहीं आ रहा था, और फिर छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद कुछ और कार्य में लग गए, और फिर अवचेतन मन एक्टिव हो गया, क्योंकि वो यादें अवचेतन मन में समाई हुई थी और वहां से निकला अचानक। तो क्या ये कहेंगे कि पहले जो कोशिश की थी, मेहनत की थी, सब व्यर्थ हुई, क्योंकि उत्तर तो अवचेतन से निकला। भगवान को पाने के लिए हरेक ने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, पर हमारे कोशिश करने से वो नहीं मिला। वो मिला प्रसाद के रूप में, जैसे अवचेतन मन से आया है वो। तो मनोविज्ञान कहता है वो जो पहले मेहनत की थी वो व्यर्थ नहीं है, वही मेहनत सारी समा गई अवचेतन में, और फिर अवचेतन के गर्भ से उत्तर निकला। तो कोई ये नहीं कह सकता है कि हम मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा ने तो कहा है मेहनत मत करो। मेहनत चेतन तल पर होगी, और फिर वही मेहनत अवचेतन में चली जाएगी, और वहां से फल निकलेगा। जैसे वो उदाहरण दिया कि याद नहीं रहा और अचानक याद आ गया। यदि किसी को कोई सेवा करनी है और वो सोचे कि बाबा मेरे द्वारा कराएगा, ये बहुत अच्छा कार्य है, संकल्प है, परंतु बाबा तब कराएगा जब मैं अपने ऊपर मेहनत करूंगा, तैयारी करूंगा, तब वो इंस्ट्रूमेंट बनाएगा मुझे। जैसे भाषण का ही ले लो, कोई सोचे कि बाबा बुलवाएगा, बहुत अच्छी बात है, हम तो बस जाके खड़े हो जाएंगे, परंतु यदि उसको भाषा ही नहीं आती हो तो, और उसने काम ही नहीं किया हो तो प्रयत्न तो करना पड़ेगा और फिर भगवान उसको इंस्ट्रूमेंट बनाएगा, उसके सिवा नहीं होगा। तो मेहनत मुक्त बनो, इसका अर्थ ये नहीं कि पुरुषार्थ ही छोड़ दो। बाप बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते और दूसरी तरफ तुम्हें 200 नाखूनों का जोर लगाना है, दोनों ही बातें मुरली में आई है और दोनों में कोई विरोध नहीं है। प्रयत्न करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, हम अपने आप को योग्य बनाएंगे, एक तो ये पहलू है, और दूसरा चेतन में की हुई मेहनत अवचेतन में समा जाती है और फिर अवचेतन उत्तर देगा, फल देगा। इसलिए प्रयत्न करते रहना, स्वयं को योग्य योगी बनाते रहना, फिर वो उस आत्मा को अपना वाहन बनाएगा। तो मेहनत से मुक्ति के लिए, मेहनत से मुक्त क्यों नहीं हो रहे, प्रत्यक्ष फल क्यों नहीं खा पा रहे, इसके 14 कारण बताए। सबसे पहला, बीज शक्तिशाली नहीं है। फल निकलेगा कैसे? बीज शक्तिशाली चाहिए। अगर बीज ही कमजोर है तो फल नहीं निकलेगा। और बीज बताया संकल्प है और कर्म है। थॉट पावरफुल हो, मन की भूमि पर, अवचेतन की भूमि पर जो बीज बोए जा रहे हैं वैसे ही फसल निकलेगी। कमजोर बीज कमजोर फसल। तो सबसे पहला काम करना है थॉट लेवल पर, संकल्प के तल पर। कैसे बनाएंगे संकल्प शक्तिशाली? कैसे संकल्प शक्तिशाली बनाएंगे? पहले तो संकल्पों को जमा करना है, पावरफुल थॉट्स को क्या करना है, जमा करना है। कहां से जमा करेंगे? मुरलियों से। बिना योग के विकर्म विनाश नहीं हो सकते। आज सुबह की साकार मुरली, बिना योग के विकर्म विनाश नहीं हो सकते। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कितनी बार पूछो? हजार बार पूछो। और हजार बार पूछने के बाद भी समझ में नहीं आया तो फिर से हजार बार पूछो। मुरली में कुछ पावरफुल लाइन्स आती है, बिना निराकार परमपिता परमात्मा के, क्या? बिना निराकार परमपिता परमात्मा के ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों को कोई पढ़ा नहीं सकता, इतने भारी लोग है ये, क्योंकि भगवान ही चाहिए इनको पढ़ाने के लिए। किसी दूसरे टीचर के बस के काम ही नहीं है ये, कोई दूसरा आए तो उसी को पढ़ा देंगे, उसी का अंगूठा निकालकर उसके हाथ में दे देंगे। मुरली खान है, खजाना है, सुंदर सुंदर वाक्यों का, महान चिंतन के लिए खजाना है। एक वाक्य लेना, बाप ही सब कुछ है, बाप में सब कुछ है, कितनी सुंदर लाइन है। बस एक ही रास्ता है याद का, और कोई रास्ता ही नहीं। ये सब संकल्प है जो हर दिन की मुरली से उठाने हैं, और उठा के क्या करेंगे, उनका चिंतन। आज कहा है विचार सागर मंथन करो, भक्ति शुरू कैसे हुई, बाप विचार सागर मंथन नहीं करते, तुम्हें विचार सागर मंथन करना है। भक्ति शुरू कैसे हुई सोचो, कहां शुरू हुई, कब शुरू हुई, किसने शुरू की, क्या क्या हुआ फिर भक्ति में, कैसा चक्र घूमा भक्ति का, जो अभी भक्ति हो रही है वो भक्ति, और जो पहले भक्ति थी वो भक्ति, उस भक्ति में और इस भक्ति में क्या अंतर, भक्ति क्या है, भक्ति के प्रकार कितने हैं, कौन कौन से भक्त हुए हैं और अब कौन कौन से भक्त है, क्यों भक्ति रात है अंधकार है। चिंतन, शिव बाबा चिंतन नहीं करेगा, विचार सागर मंथन बच्चों को करना है। तो सबसे पहली बात मेहनत लग रही है, क्यों मेहनत लग रही है, क्योंकि बीज ही कमजोर है, इस बीज को पावरफुल बनाना है, और बीज शक्तिशाली बनेगा चिंतन से, मनन से, अध्ययन से, चर्चा से, गहराई में जाने से, सोचने से, विचार करने से, तर्क से, रीजनिंग से, लॉजिक से। बातें आई और हमने छोड़ दी, चिंतन किया ही नहीं, तो कहां से विचार सारे दिन भर शक्तिशाली कहां से होंगे। शक्तिशाली संकल्प, शक्तिशाली ज्ञान की पॉइंट्स हमारे पास हो और उठा लेनी है मुरली से, अलग कर देना है उस पॉइंट को मुरली से, उठा लिया अलग कर दिया, वस्तु है जैसे उस वस्तु को देख रहे हैं। कर्म को भी बीज कहा बाबा ने, संकल्प भी बीज है और कर्म भी बीज है, दोनों को ही शक्तिशाली बनाओ, तब प्रत्यक्ष फल खा सकेंगे, तब फिर मेहनत नहीं होगी, नहीं तो मेहनत ही मेहनत, बोझ ही बोझ। और संगम युग मौजों का युग है, उन मौजों के युग का कोई अनुभव नहीं होगा। दूसरा, मेहनत लगती है इसका कारण, भूमि शक्तिशाली नहीं है। यदि कोई बीज पथरीली जमीन पर डाल दिया जाए तो क्या वो अंकुरित पल्लवित होगा, पहाड़ों पर फेंक दिया जाए जहां पर बड़ी बड़ी पत्थरों की चट्टान है, शायद नहीं। उसके लिए उपजाऊ उर्वर भूमि चाहिए, फर्टाइल लैंड चाहिए, और भूमि को शक्तिशाली बनाना अर्थात वातावरण को शक्तिशाली बनाना। जब भूमि शक्तिशाली नहीं, वातावरण शक्तिशाली नहीं, तो क्या होगा, मेहनत लगेगी, चाहे सेवा केंद्र, चाहे घर, चाहे ऑफिस, जहां पर भी हम हैं, उस वातावरण को शक्तिशाली बनाने की जिम्मेवारी हमारी है। क्योंकि वातावरण किससे बनता है, संकल्प से। जरूर व्यर्थ संकल्प चला रहे हैं, जरूर निगेटिव चल रहा है, इसलिए यदि घर में सब लोग ज्ञान में है तो घर में ही संगठित योग, ऑफिस में है तो उस ऑफिस के वातावरण को बीच बीच में रुककर चार्ज करना है, शक्तिशाली बनाना है। सेवा केंद्र पर है तो उस सेवा केंद्र के वायुमंडल को भी पावरफुल बनाना है, तपस्या से अखंड योग भट्टी के प्रोग्राम रखकर, क्योंकि वर्तमान समय सबसे बड़ी सेवा कौन सी है, वायुमंडल को शक्तिशाली बनाना। ये दूसरा कारण है जिसके वजह से मेहनत लग रही है, क्योंकि बीज जो बोया जा रहा है उस भूमि पर शक्तिशाली भूमि नहीं है। वो बीज को शक्तिशाली बनाओ। तीसरा, खुद ही फल को खा लेते हैं, अभी पका भी नहीं, कच्चा ही खा लिया। इसके लिए फिर प्रत्यक्ष फल हाथ नहीं आता, खुद खा लेना अर्थात मैंने किया, मैं कर रहा हूं। अगर मैं ना होता तो ये सेवा नहीं होती। ये भाव संपूर्ण समर्पण अर्थात मैं का गिर जाना, यदि वो नहीं गिरा है तो शायद जैसा प्रत्यक्ष फल हम खाना चाहे वैसा नहीं खा पाएंगे, कच्चा खा लेंगे। जहां जहां मैंने किया आता है स्वयं स्वयं की चेकिंग करनी है, क्या वास्तव में मैंने किया, कराने वाला ऊपर बैठा है, उसी के द्वारा संगम युग पर सारी सेवाएं हो रही है, हम केवल और केवल निमित्त मात्र है। इस इंस्ट्रूमेंट के भाव को कूट कूट कर अपने अंदर भरना है, क्योंकि अध्यात्म के मार्ग पर सबसे बड़ा जो शत्रु है वो अहंकार का अंधकार है। छोटा छोटा जो भी कर रहे हैं उस हर बात का अहंकार, और वो अहंकार आत्मा को नीचे ला रहा है। जैसे कोई चिपकली इस छत पर है और उसके दोस्त उसे बुलाने आ जाए कि चलो थोड़ा बाहर खेलते हैं, और वो कहे कि नहीं नहीं मैं नहीं आती हूं, नहीं तो छत गिर जाएगा। उसे लग रहा है उसने पकड़ के रखा है छत को। बैलगाड़ी का चाक है और उसमें एक मच्छर बैठा हुआ है, और बैलगाड़ी चल रही है और धूल उड़ रही है, वो सोचता है वाह कितनी मैं धूल उड़ा रहा हूं, कहीं वो मच्छर और वो चिपकली हम ही तो नहीं। इतनी सेवाएं, इतने स्टूडेंट्स, इतने सेंटर, इतने प्रोग्राम, मैं तो नहीं कर रहा हूं। संगम पर जो कुछ हो रहा है परमात्म शक्तियों के द्वारा हो रहा है। सारी सेवाएं जो विशेषता हमें प्राप्त है, परमात्म देन है, उपहार है, प्रभु प्रसाद है, वो चाहे तो छीन भी सकता है। इसके लिए मैंने कहा, मैंने किया, ये कहना अर्थात फल को खा लिया, अर्थात फिर मेहनत लगेगी, फिर रहेगा मैं सब कुछ कर रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, और जहां मैं है वहां मेहनत है। ये तीसरा कारण। चौथा कारण, छह प्रकार की चिड़िया है, पंछी कौन कौन सी है, एक तो माया की समस्या रूपी चिड़िया, दूसरा माया का वातावरण, तीसरा परमत चौथा मनमत, संग दोष और व्यर्थ संकल्प। ये जो छह चिड़िया है क्या करती है, आके फल को खा जाती है और फिर हमको मेहनत लगती है। सेवाएं कर रहे हैं परंतु पर चिंतन में है, मन मत पर है, पर मत पर है या संग दोष में है और माया का वायुमंडल है, माया की समस्याएं है। ये छह के छह चीजें जब आएगी तो फल हमारा समाप्त हो जाएगा और फिर मेहनत करनी पड़ेगी। सूक्ष्म में हर एक को स्वयं की चेकिंग करनी है, मैं संग दोष में तो नहीं। संग दोष दो प्रकार के हैं, एक आंतरिक एक बाह्य। बाह्य अर्थात उन आत्माओं का संग जो पुरुषार्थ के प्रति सोए हुए हैं, उन आत्माओं का संग जो विस्मृति में है, जिन्हें ये भूल गया है कि ये योग का समय है, तपस्या का समय है, ये संगम युग का समय चल रहा है, आए थे क्या करने और कर क्या रहे हैं, महान तपस्वी बनने का समय है, जो ये भूल गए हैं कि जब हम सोते हैं तो संसार सोता है, जब हम जागते हैं तो संसार जागता है। हम मुक्ति और जीवन मुक्ति देने के लिए निमित्त है संसार की आत्माओं को। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो भूले हुए हैं उनका संग करना, भोग और विलास में जो डूबे हुए हैं उनका संग करना, एक दूसरों की जो निंदा करते हैं उनका संग करना, एक दूसरों को जो गिराते हैं, षड्यंत्र करते हैं, व्यर्थ में रहते हैं, नींद में है, बेहोशी में है, मूर्छा में है, पाप में है, सूक्ष्म पापों का जिन्हें कोई ज्ञान नहीं, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं का संग करना अर्थात कुसंग। ये बाह्य, एक है आंतरिक कुसंग। एकांत के क्षणों में जब कमरे में है और दरवाजे बंद है और खिड़कियां बंद है, मन में व्यक्ति किसका संग कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या कल्पनाएं कर रहा है और किन विचारों में आनंद ले रहा है, वो सूक्ष्म कुसंग है। तो कुसंग की चिड़िया, मनमत की चिड़िया, परमत की चिड़िया, माया की समस्या, माया का वातावरण, व्यर्थ संकल्प की चिड़िया, ये छह के छह चिड़िया आती है और फल को खा जाती है और फिर हमको क्या करना पड़ता है, मेहनत, जद्दोजहद, बहुत मेहनत, और मेहनत करने के बाद भी मिलता हाथ में कुछ नहीं, इतना किया पर कुछ नहीं, कोई खुशी नहीं आंतरिक। ब्राह्मण जीवन संघर्ष में बीत रहा है, आंतरिक संघर्ष और बाह्य संघर्ष। तो ये चौथा कारण है मेहनत का। पांचवा कारण, आलस और अलबेलापन। जितना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, कारण आलस और अलबेलापन। सूक्ष्म आलस अंदर समाया हुआ है, अव्यक्त मूल्यों का अध्ययन न करने का आलस। योग के चाटक बढ़ नहीं रहा है क्योंकि आलस है, क्योंकि श्रेष्ठ संकल्प और शक्तिशाली संकल्प नहीं लिया जा रहा है कि करना है। दृढ़ता सफलता की चाबी है, बाबा ने कहा। जो योग चल रहा है उसी से संतुष्ट है, जितना ज्ञान को समझा है उसी से संतुष्ट है, समझना भी बहुत बाकी है। समझने का भ्रम कि हमने जान लिया बहुत बड़ा भ्रम है। स्थूल आलस्य है, सूक्ष्म अलबेलापन है। आलस शरीर से संबंधित है, अलबेलापन मन से संबंधित है। तो स्वयं को देखना है किस चीज में मैं आलसी हूं। एक गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, जरा देखना बाहर बारिश तो नहीं हो रही है। वो कहता है, मैंने अभी अभी बिल्ली को हाथ लगाया, वो सूखी है, वो अभी भी बाहर से आई है, इसका मतलब बारिश नहीं हो रही है। वो कहता है, जरा दरवाजा तो बंद कर देना। वो कहता है, इतनी अच्छी ठंडी हवा आ रही है, दरवाजा क्यों बंद करना है, दरवाजा खुला रहने दो। गुरु कहता है, अच्छा ठीक है, ये दिया तो बुझा देना। वो कहता है, दो काम तो मैंने कर लिया, तीसरा तो आप करो। संस्कार है आलस्य का और जीवन के हर क्षेत्र में काम करेगा। जो अमृत वेला चल रहा है उसको वैसा ही चलने दो। ये संकल्प नहीं है कि उसका ड्यूरेशन बढ़ाना है। ये संकल्प क्यों नहीं आ रहा है, उसकी क्वालिटी बढ़ानी है। ये संकल्प क्यों नहीं आ रहा है, उसमें एकाग्रता बढ़ानी है। ये संकल्प क्यों नहीं आ रहा कि उसमें वैसा नहीं हो रहा है जैसा होना चाहिए। पता नहीं क्यों ये शब्द होते हैं किन आत्माओं के, वंचित आत्माओं के। एक है प्राप्ति स्वरूप आत्मा है, दूसरी है वंचित आत्मा है, डिप्राइव्ड। तो ये पांचवा कारण है। छठवा कारण, स्मृति स्वरूप के किले के अंदर नहीं रहते। स्मृति स्वरूप का किला कैसा होता है, ये किला? कभी इस किले के अंदर बैठकर योग करना अमृत वेला, कि मैं किले के अंदर बैठा हूं। किला तो देखा होगा ना सबने, कैसे किले होते बड़े बड़े, वैसे मैं उस फोर्ट्रेस के अंदर, फोर्ट के अंदर बैठकर तपस्या कर रहा हूं। और ये किला कैसा है, स्मृति स्वरूप का किला है। योग का अभ्यास बनाना है, कमेंट्री तैयार करनी है, विजुलाइज करना है कि मैं कहां बैठा हूं, किले के अंदर। किला कैसा है, अभेद, शत्रु भेद नहीं सकते, इम्प्रेग्नेबल, इम्पेनेट्रेबल, ऐसा ये किला है। और इसी किले पर चलता फिरता किला है ये, दूसरी बात। जहां मैं जा रहा हूं ये किला साथ साथ चल रहा है। तो स्मृति को किला बनाना है, जैसी स्मृति वैसी समृद्धि। निरंतर याद का जैसे किला है, उसमें मैं हूं। ये जब नहीं रहेगा तब मेहनत करनी पड़ेगी। एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने पाप और पुण्य की एक शब्द में परिभाषा दी है, पाप अर्थात विस्मृति, पुण्य अर्थात स्मृति। जब जब किले से बाहर होंगे विकर्म होंगे, पाप होंगे। किले के अंदर सुरक्षित। इस किले को जीतना है, इस किले को अपना बनाना है। उसके बाद अगला कारण मेहनत करने का। किले के अंदर है पर खिड़कियां खुली है कमजोरी की, दरवाजे कोई खिले है, कोई वातायान कोई झरोका खुला है, शक्ति की कमी है किसी ना किसी, इसलिए दुश्मन अंदर आ जाता है। तो चेक करना है कि मैं जिस किले के अंदर हूं, कौन सी खिड़की है, कौन सी वो खिड़की है, मोबाइल है, टीवी है, इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, कौन सी खिड़की है जिससे दुश्मन अंदर प्रवेश करता है। व्यर्थ की बातें है, गॉसिप है, परचिंतन है, परदर्शन है, परमत है, घूमना फिरना है, फैशन है, भोग है, इंद्रिय सुख है, इंद्रियों के आकर्षण है, देह के आकर्षण है, क्या है, कौन सी खिड़की खुली है, संबंध तो नहीं कोई, जिसको सेवा का नाम देकर हम चला रहे हैं वही खिड़की हो सकती है। और यदि इस किले की एक खिड़की भी यदि खुली तो दुश्मन बहुत शक्तिशाली है, बहुत होशियार है, अंदर प्रवेश कर जाएगा और फिर मेहनत करनी पड़ेगी उसे बाहर करने की। उसके बाद अगला कारण, मजबूरी से और जबरदस्ती चल रहे, चल तो रहे हैं, दूसरे क्या सोचेंगे इसलिए चल रहे हैं, जबरदस्ती, दूसरे क्या कहेंगे, मजबूरी से और नियम तो निभा रहे हैं, श्रीमत पर तो चल रहे, परंतु कैसे चल रहे, मर मर के दुखी होकर, डर है, कोई ये ना कह दे तुमको क्या हो गया, माया ने तुमको खा तो नहीं लिया। जैसे एक नाव है और उस नाव में बहुत सारे यात्री जा रहे हैं और अचानक एक मोटी सी महिला नीचे गिर जाती है तो उसका पति चिल्लाता है कि बचाओ बचाओ बचाओ, जल्दी बचाओ, कोई मेरी पत्नी को बचाओ। और वो कहता है जो बचाएगा मैं चेक निकाल के रख रहा हूं, 1,00,000 का चेक दूंगा, बचाओ पर उसको। तो एक आदमी कूदता है और बड़ी मुश्किल से उस महिला को बाहर लेकर आता है और फिर वो व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है जिसकी वो पत्नी होती है, कहता है ये लो तुम्हारा इनाम। वो कहता है इनाम विनाम बाद में, पहले ये बताओ मुझे धक्का किसने दिया था। यहां पर भी कोई धक्के से आ गए, धक्के से ही चल रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, उसने भी अच्छा काम किया, उसको बाहर तो निकाला पर अंदर से दुखी है। पहले तो उसकी तलाश है कौन था वो, मजबूरी से कभी ज्ञान योग नहीं हो सकता, जबरदस्ती से कभी ज्ञान योग नहीं हो सकता। किसी को दिखाने के लिए अगर कर रहे हैं तो ज्यादा समय नहीं चलेगा, हम योगी हैं, ये यदि दिखावा है और अंदर से भोगी तो यह ज्यादा समय नहीं चलेगा, थोड़ा समय चलेगा बस, और जैसे ये अवसर आएगा गिर जाएंगे नीचे। तो ऐसे ये 8 कारण हैं जिसके वजह से मेहनत लगती है। 9वां कारण, मुरली की शुरुआत, बेहद का दिल, बड़ी दिल, फ्राक दिल जब नहीं होगी तब मेहनत होगी। बाप है दिल वाला, बड़ी दिल है, फ्राक दिल है, खुश दिल, जब संकुचित हृदय होगा, ट्यूबुलर विजन, लिमिटेड कॉन्शियसनेस, केवल मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा जीवन, इतना ही सोच है, बेहद की सोच नहीं, तब मेहनत होगी। क्या कहा बाबा ने, कौन किसको देख रहा है, जैसे बाप बेहद का है, अविनाशी बाप है, वैसे तुम भी क्या करो, बेहद के दाता बनो, बेहद का दातापन जब नहीं होगा तब मेहनत होगी। हमें केवल भारत की ही नहीं विश्व की सेवा करनी है, हमें केवल विश्व की ही नहीं प्रकृति की भी सेवा करनी है। प्रकृति कैसा तांडव नृत्य कर रही है, अभी क्रुद्ध है तत्व, एक तत्व जब क्रोधित होता है तो कैसा अहंकार होता है। आज भी कहा साकार मुरली में सागर क्या करेगा, उछल खाएगा, जैसे आत्मा उस गर्भ में त्राही त्राही करती है, मुझे छुड़ाओ, और निकालने के बाद भूल जाती है। वो त्राही त्राही का अनुभव, गर्भ जेल का अनुभव नेचुरल कैलेमिटीज के समय होता है आत्माओं को। जो पक्के योगी हो गए वही उसमें स्थिर रहते हैं, बाकी सब हलचल में आ जाते हैं, बाढ़ ही बाढ़, पानी ही पानी। तो बेहद में ले जाना है खुद को। अगला कारण अटेंशन की कमी। जब अटेंशन की कमी होगी तब मेहनत लगेगी। पल पल अटेंशन, प्रति पल अटेंशन खुद के ऊपर, कहीं मैं भटक तो नहीं गया, भूल तो नहीं गया मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, किस लिए आया था, क्या कर रहा हूं, क्या महान योगी बनने का जो स्वप्न था पूर्ण हो गया, क्या ऐसा जीवन तपस्वी और वैरागी और वैसा बना है जैसा बाबा चाहते हैं। 1974 में दादी सबसे पहली बार जब लंदन गई थी, एक टूटा हुआ दरवाजा मिला था, उसी दरवाजे को दादी ने अपनी खटिया बनाई, जो रात में खटिया रहती थी और सारे दिन भर संदली का काम होता था। ऐसा त्यागी और तपस्वी जीवन, ऐसा वैरागी जीवन, खुद के लिए कुछ नहीं सब कुछ यज्ञ के लिए। कैसा वैराग हमारे अंदर है। यह भोग और विलासिता में डूबा हुआ यह जीवन है, यह सुख सुविधाओं में डूब चुके हैं और तपस्वी केवल कहने मात्र रह गए। तो अटेंशन, प्रतिपल अटेंशन। अगला कारण है दिल तप्त नशीन जो है वो स्वतः ही मेहनत से मुक्त है। कितना सुंदर वाक्य है मुरली में, अर्थात जो दिल तख्त नशीन नहीं है उनको मेहनत है, जो बाप के दिल पर बैठे हुए नहीं है। सच्ची दिल पर साहेब राजी और खोटी दिल पर माया राजी। जिस हृदय में करप्शन है, षड्यंत्र है, कॉन्स्पिरसी है, जिस हृदय में झूठ है, जिस हृदय में कपट है, छल है, जिस हृदय में दूसरों को गिराने की भावना है, नीचा दिखाने की भावना है, वो किसको राजी कर रहे हैं? ऐसे दिल पर कौन राजी है? माया राजी है। माया को बहुत प्रिय है ऐसे हृदय, वो वहां आकर लंबा लंबा समय तक रहती है, अपना घर लगता है उसे। वो तो जो दिल तख्त नशीन है भगवान के, उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती। और बाप का दिल तख्त कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। बाबा ने कहा, परंतु एक वरदान था, अत्यंत प्योर आत्मा ही बाप के दिल तख्त पर बैठ सकती है, क्योंकि ये दिल तख्त बहुत प्योर है। ये दिल तख्त कैसा है? बहुत प्योर है। जो प्योर होगी वही इस पर बैठने के अधिकारी है, पात्र है, बाकी तो सब फिसल जाएंगे। तो जो दिल तख्त नशीन है वो मेहनत से मुक्त है। दूसरा, अगला, स्मृति का स्विच ऑन करो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। मेहनत कर रहे क्योंकि विधि, स्मृति नहीं, विधि का स्विच ऑन करो। विधि ही गलत है। यदि यथार्थ विधि से कोई भी काम करो तो वो मेहनत युक्त नहीं होगी, मेथड गलत है। शायद अमृत वेला जिस तरह से कर रहे वो मेथड ही गलत है, जिस तरह से मुरली पढ़ रहे सुन रहे शायद वो मेथड ही गलत है, जिस तरह से सेवा कर रहे शायद उसकी कोई अच्छी विधि भी है जो हमें पता नहीं, शायद वही सेवा किसी और ढंग से भी की जा सकती है जो दूसरे कर रहे, परंतु उसको देखकर उनसे सीखने के लिए हमारा ईगो हर्ट होता है, आहत होता है, अहंकार को बड़ी चोट लगती है दूसरों को सीख, दूसरों से सीखने में। तो विधि का क्या करो, स्विच ऑन करो। अभी विधि का स्विच ऑफ है इसलिए मेहनत है, तो स्विच ऑन, मेहनत समाप्त। उसके बाद में 13वीं पॉइंट, मास्टर सर्वशक्तिवान बने हो। मास्टर कहते हो और मेहनत, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं है तो मेहनत। मुझ में अनंत शक्तियां समाई हुई है, मैं शिव शक्ति हूं, अतुलित बल दामा, राम काज करिबे को आतुर, वो मेरा यादगार है। शक्ति स्वरूप में स्थित करना, शक्तियों का आह्वान करना, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, सुपर पावर्स मेरे पास है, सुपर पावर्स ऑफ प्योर मैन। संसार में स्पाइडरमैन, ही मैन और कौन कौन से, बहुत सारे मैन होते हैं उधर और इधर हमारे पास है प्योर मैन। तो हमारे पास क्या है, सुपर पावर्स है प्योर मैन की। शक्तियां कहीं से लानी नहीं है, वो है, आह्वान करना है उनका। और लास्ट पॉइंट है कौन सी, बोझ उठा लेते हैं इसलिए मेहनत है। बोझ क्यों उठाते हो, जब बाप बैठा है, सुबह का वरदान, सब बोझ बाप को दे दो, बुद्धि से सरेंडर हो जाओ, हवाले कर दो बाप को, सरेंडर्ड इंटेलेक्ट, समर्पण कर दिया, अब वो भरेगा सब कुछ उसमें। जब हमने पकड़ के रखा है अपनी बुद्धि को, कुंडली मार कर बैठे हैं अपनी बुद्धि पर, कोई हाथ नहीं लगाना, तो उसकी विशेषता उसमें नहीं भरेगी, समर्पण इंटेलेक्ट का। तो बोझ नहीं, बोझ है तो मेहनत, डबल लाइट बन जाओ, फरिश्ते बन जाओ। तो ऐसे मुरली में बाबा ने टोटल 14 कारण गिनाए हैं। सबसे पहला कारण, बीज को शक्तिशाली बनाओ। दादी जब लंदन गई थी तो दादी का एक संकल्प था, ऑक्सफोर्ड में हमारा एक सेंटर होना चाहिए, कितनी बड़ी बात थी। वो थेम्स नदी के तट पर, जहां अभी ऑक्सफोर्ड रिट्रीट सेंटर बन गया। दो संकल्प थे, एक मैनचेस्टर में होना चाहिए, वहां पर भी हो गया। संकल्प शक्तिशाली तो साकार होगा। तो बीज को क्या करो, शक्तिशाली बना दो। दूसरा, भूमि को शक्तिशाली बना दो। तीसरा खुद ही मत खा लो, मैंने किया, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, मैं ये भी करता हूं, मैं वो भी करता हूं, मुझ में ये भी है, मुझ में वो भी है, मैं याऊं हूं, मैं त्याऊं हूं, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं इतना बड़ा, मैं उतना बड़ा। उसके बाद माया के 6 पंछी, चिड़िया, कौन कौन सी, माया की समस्या, माया की मुखा वातावरण, परमत, मनमत, संग दोष और व्यर्थ। संग दोष पर काम करना है। उसके बाद में आलस, अलबेलापन, उसके बाद में किला, स्मृति स्वरूप का, उसके बाद में किले में है परंतु खिड़की खुली है, उसके बाद मजबूरी और जबरदस्ती से चल तो रहे, दिखावे के लिए चल रहे, उसके बाद बेहद, उसके बाद अटेंशन, उसके बाद दिल तख्त नशीन बैठ जाना है, प्योर तख्त है, फिर से कह रहे हैं, कोई भी नहीं बैठ सकता इसमें, बहुत प्योर है, जरा भी अपवित्रता होगी तो योग्य नहीं है, हे राजा भोज कहाँ जा रहे हो, पता है ये किसका सिंहासन है? ये विक्रमादित्य का सिंहासन है। क्या उस जैसी योग्यता तुम में है? अगर है तो फिर ही बैठना। और राजा भोज पीछे। परंतु फिर भी कितनी अच्छी बात बताई, कितना उसको एहसास तो है। लंदन में एक दूसरी बात बता रहे, एक भाई नया नया ज्ञान में आया, 3 मास हो गए। दादी ने उसको पूछा क्या अनुभव है तुम्हारा, तो उसने बताया कि 3 मास में मुझे पता चला दादी मुझ में कितना देहभान है। दादी ने कहा बिल्कुल सही पकड़ा तुमने, 3 मास में मुझे ये पता चला मैं कितना इगोइस्टिक हूं, अहंकारी हूं। दादी ने कहा वेरी गुड, रियलाइजेशन तो हुआ। अगला दिल तख्त नशीन के बाद विधि, विधि का स्विच ऑन करो। उसके बाद मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट। और लास्ट बताया बोझ नहीं, बोझ दे दो। ऐसे कैसे? वारिस आत्माओं को ऐसे वरदाता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाली वरदानी आत्माओं को, ऐसे दिल खुश आत्माओं को, ऐसे प्राप्ति का सहज फल प्राप्त करने वाली आत्माओं को, बाप दादा का दिल वाला बाप का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। 3 पार्टियां और 1